الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة البقرة آيات نمبر 153 سے 162 تک کریں گے. آپ نے پچھلے لیسن پر غور کیا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے جو بنی اسرائیل سے لے کر اس امت کو عطا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں اس چیز کے ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوئے اور نہ ہی انہوں نے صحیح سے اس حق کو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مقام چھین لیا اور اس امت کو عطا کر دیا. اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیسے آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ امت وسط کے فرد ہونے کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہے. کیا آپ نے پھر وہ سروے کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، میں نے آپ کو کہا تھا کم از کم 15 سے 20 لوگوں تک آپ پوچھیں کہ امت وسط کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپ چنی ہوئی امت ہیں تو آپ کیوں چنے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ امید ہے آپ نے یہ کام کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا چرچا کیا جائے، اس چیز کو عام کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا اس امت کا مقصد کیا، اس کا مشن کیا، اس کا گول کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو لے کر سامنے اور اس امت کو چلنا ہے اس دنیا میں. یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، انبیاء کے بعد اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ امت وہ کام کرے گی جو نبیوں کا کام ہوتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. پھر اس پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس منصب کو کے قابل سمجھا اور ہمارے لیے یہ اتنا بڑا جو ذمہ داری کا کام تھا ہمارے لیے تو نے رکھا، ہمیں اس امت میں پیدا کیا. اسی لیے یہاں پہ نا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور شکر ادا کیا، کیونکہ ایک تو آپ کو اتنی چنی ہوئی بڑی امت جو کہ بہت اسپیشل ہے اس کا ٹائٹل ملا امت وسط کا، بہترین امت، اور بھی میں نے آپ کو معنی بتائے تھے بیسٹ امت. تو جب ہم بنی اسرائیل کا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ان کو اتنی بڑی فضیلت مل گئی اور ہمارے لیے کیا ہے. تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنا دیا، تم تو وہ لنک ہو جو نبی کے اور آنے والے لوگوں کے، انسانیت کے درمیان ہے. جتنی انسانیت قیامت تک آئے گی ان تک دین کو پہنچانا تمہارا کام ہوگا. کتنا بڑا عہدہ ملا، کتنا اسپیشل کام پہ آپ کو لگایا گیا. دنیا کے باقی لوگوں کو یہ کام نہیں ملا، اس امت کو ملا، اور اس کے لیے ایک رسول بھی ان کے اوپر وہ بھیجے گئے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جو تمہارے اوپر آیات پڑھتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. اتنی نعمتیں ملنے کے بعد شکر تو بنتا ہے نا، پھر تو شکر کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشکرو لی ولا تکفرون، دیکھو ناشکری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے بندوں سے. ویسے بھی ناشکری کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن जिनको अल्लाह ताला खास इनामात से नवाजे और बिन मांगे ही आपको मिल गया। क्या आपने कोई दरख्वास्त तो नहीं दी थी कि मैं इस उम्मत में पैदा हूं? अल्लाह ताला ने आपको इस चुनी हुई उम्मत के अंदर पैदा फरमा दिया और आपके पास ऐसे रसूल भी भेज दिए जिन्होंने आपको सारा पूरा आपका जो सिलेबस था ना वो आपको दे दिया। तो अब बनता है कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमारे साथ इतनी बड़ी भलाई कर दी। जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला है कि फरिश्तों में आपका जिक्र होगा और फरिश्तों में आप महबूब हो जाएंगे। जिन लोगों की तारीफें अल्लाह ताला उन मजलिसों में कर रहा हो तो क्या बात है उन लोगों की, कितनी बड़ी सआदत है उन लोगों के लिए। तो ये बड़ा मकाम है, हम सबको पता है जिक्र करना चाहिए। जैसे कि हमें बताया गया अल्लाह ताला के लिए सबसे पसंदीदा चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जान इस हाल में निकले कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, तुम्हारी जुबान पे उस रब का जिक्र हो, ये अल्लाह ताला चाहता है। तुम ऐसे बंदे हो जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हो उस टाइम पे भी, और ये वो ही कर सकेगा ना जो कि अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे जिंदगी के अंदर, वो ही फिर मरते वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा। और अल्लाह ताला के जिक्र की इस कदर फजीलत है, आप देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसका जिक्र करूंगा जो मेरा जिक्र करेगा। हालांकि ये तो इंसान का अल्लाह ताला का जिक्र करना तो चलो बनता है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं इंसान को तो वो तो जिक्र करे ही, अल्लाह को याद करे। लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किसी को याद करे, उसको तो जरूरत ही नहीं है कि वो किसी बंदे को याद रखे। क्या इस बंदे की औकात है और कहाँ वो रब्बुल आलमीन। आप देख लें कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो जिनको बड़ा कोई को बादशाह आप समझते हैं, कोई बादशाह है या कोई आप जिसको भी आइडियलाइज करते हैं, कई लोग होते हैं बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े उनको स्टार कहते हैं, बड़े कोई स्पोर्ट्समैन है किसी का कोई है, तो उनके फैंस होते हैं। अब वो फैन तो उनको बस हर वक्त फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनकी खबरें सुन रहे होते हैं। वो आज उस वक्त उठा तो इस वक्त बैठा तो उस वक्त वहां गया, बस सारा वक्त उनका जिक्र ही है ना, ये उनको याद कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी जाके उनसे पूछा क्या वो भी याद करते हैं इस तरह कि वो भी आपको इसी तरह या अपने सारे फैंस को इसी तरह याद कर रहे हो कि वो सोच रहे हो कि आज हमारे फलां मेरे फैन का क्या नाम है और उसके घर वाले कितने हैं और उसके साथ क्या हालात हैं? तो उनको परवाह भी नहीं होती, आप उनके सामने भी चले जाओ उनको पता ही नहीं आप हैं कौन। आपको लगता है कि ये मुझे जानता होगा लेकिन उसको तो आपकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसके तो बहुत बहुत लाखों फैंस हैं। तो इंसान को जब आप याद करते हैं ना, किसी भी इंसान को आप समझते हैं बड़ा काबिल, आप उसको याद करते हैं, तो ये हाल है कि उसको आपका शायद पता भी ना हो कि आप भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। लेकिन जब अल्लाह ताला को आप याद करते हैं उससे ऊपर तो कोई जात है नहीं, उसके बराबर कोई जात है नहीं, तो सोचें कि उसको एक-एक का पता है, एक-एक के हाल का पता है। वो जो रब्बुल आलमीन है, बंदा ये एक जर्रा उसका जिक्र करे तो बनता है, जाहिर है इसकी हर जरूरत अल्लाह ताला के साथ ही पूरी होती है। लेकिन अल्लाह ताला की कोई जरूरत तुम्हारे साथ नहीं है, उसको तुम्हारे कोई वो नहीं कि कोई चीज को तुमसे चाहिए हो। हमें तो बहुत कुछ चाहिए होता है, इसी लालच में भी बाज दफा हम जिक्र करते हैं, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो दुनिया में आप जिनके पीछे वक्त जाया करते हैं, इनको फॉलो करने में, इनको देखने में ये क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं और आ रहे हैं, उनको आपका पता भी नहीं, फिर भी आप उनको इतनी अहमियत देते हैं कि हर दिन आप सुबह उठ के देखते हैं कि उसकी कोई न्यूज़ तो नहीं है, जो भी जिनको भी आप आइडियलाइज करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला देखें जब उसका कोई बंदा जिक्र करता है तो वो उसकी एक एक आवाज को सुनता है दिल में जिक्र करो तब भी सुनता है, जुबान से जिक्र करो तब भी सुनता है। तो दिल में, असल में तो दिल में याद होती है, उसके बाद जब याद इतनी ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर जुबान पे जरूर आती है। कोई कह नहीं सकता मैं दिल में बड़ा याद करती हूँ, जुबान पे कभी कोई चर्चा आया ही नहीं। देखिए, आपका ध्यान हर वक्त अपने बच्चों की तरफ लगा रहता है, तो आप हमेशा बैठे उठे हमेशा उनका जिक्र करते रहते हैं। क्या कहीं दूर भी चले जाएं तो आपको फिक्र रहती है, उनकी बात करते रहते हैं। किसी मजलिस में बैठते हैं तो तब उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं, क्योंकि आपके दिल में उनकी याद होती है। इसके दिल में अल्लाह ताला की याद होगी, वो जरूर उसका जिक्र उठते बैठते करेगा। वो कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात है कि किसी का, किसी घर के पास से गुजरो तो आपको पता चल जाता है अंदर क्या खाना पका हुआ है, खाने की खुशबू आ रही थी। कैसे हो सकता है आप किसी के पास बैठो, उसके दिल में अल्लाह की याद हो और वो याद की खुशबू ना आप पा सकें? कैसे हो सकता है? जरूर आएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले ना बड़े अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह ताला को बड़े महबूब होते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसी ऐसा अमल ना बताऊं कि सोना चांदी दिन रात तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो, पर उससे भी ज्यादा अफजल है वो अमल, वो अल्लाह ताला को याद करना है। और आप नमाज में याद करें, वो नमाज ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक नमाज वो भी है ना जिसमें अल्लाह की याद ही नहीं होती, जैसे मुनाफिकीन की होती थी। हाँ जी, ऐसी भी नमाज होती है ना, इसमें पता ही नहीं क्या बोला क्या पढ़ा। तो जब नमाज में अल्लाह को याद करो तो उस नमाज का अजर बढ़ जाता है, रोजे में अल्लाह को याद करो उस रोजे का अजर बढ़ जाता है, अब हज उमरे पे अल्लाह को याद करो उस हज उमरे का अजर बढ़ जाता है। किसी चीज को भी मैकेनिकल होके नहीं करना कि मशीन की तरह बस करते जा रहे हैं, कोई रोबोट्स तो है नहीं हम, उसमें अल्लाह की याद होनी चाहिए। तो जब अल्लाह ताला की नेमतों को भी देखते हैं तो फिर शुक्रगुजारी आती है, और यही अल्लाह ताला को अपने बंदे से पसंद है। देखिए, ना शुक्रे को तो हम भी पसंद नहीं करते। हमने किसी के साथ जरा सा भी किसी का काम करके दिया हो ना, तो हम उससे शुक्रगुजारी जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे जुबान से ना भी बोले ना, तो फिर भी हमारे दिल में होता है। जब भी हम फिर गिले शिकवा करते हैं कि उनसे तो इतना भी ना हुआ कि मेरा एक थैंक यू का नोट ही भेज दें, एक टेक्स्ट ही भेज दें, कभी इन्होंने शुक्रिया भी नहीं अदा किया। चलो हम कहते हैं ना कोई बदला ना दे, शुक्रिया तो करे ना, हम जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हमें अच्छा नहीं लगता, ना शुक्रा होता है, आगे से बदतमीजी करना शुरू कर दे, आपको पसंद नहीं आता, हालांकि हमने छोटा सा काम किया होता। और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में तो हम डूबे हुए हैं, दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लम्हा ऐसा नहीं है, एक माइक्रो सेकेंड भी ऐसा नहीं जिसमें हम अल्लाह ताला की नेमत को ना यूज कर रहे हो, किसी ना किसी नेमत को। तो उसको कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई ना शुक्रा हो? और ना शुक्री यही होती है कि ये जो हम हर वक्त गिले शिकवे और हर वक्त रोने रोते रहते ना, मैं अक्सर ही कहती रहती हूँ इंसान किसी हाल में खुश नहीं, क्योंकि जिसको भी सुनो ना वो किसी ना किसी चीज की शिकायत जरूर कर रहा होता। अब एक मतलब मिसाल है, कोई वैसे इंसान कोई चीज मांगता रहता है, जरा सा कुछ हो जाए ना, किसी ने कहा हस्बैंड बीमार हो गए वहां पे, इससे अच्छा तो था हम उम्रे पे जाते ही ना। कि अब ये नाशुक्री का कलमा है, अगर ना जाते तो आपने कहना था हाय हम गए नहीं, अगर चले गए तो तब भी कोई नाशुक्री का कलमा निकाल ली। कहीं हम अपने रंग रूप के बारे में ना खुश हैं, कहीं अपने स्टेटस के बारे में, कहीं अपने बच्चों के बारे में, कहीं अपने हस्बैंड से गिले शिकवे हैं, कहीं अपनी जहनी सलाहियत के बारे में, कहीं अपने वालदेन से ना खुश हैं, कहीं अपने घर से ना खुश हैं, कहीं अपनी गाड़ी से ना खुश हैं, ये भी ऐसा ये भी ऐसी, ये हर चीज में शिकायत है। तो जहां पर भी आप ना खुश हैं ना, वही तो ना शुक्री है। और आपको पता है ना जहन्नुम में औरतें किस वजह से ज्यादा जाएंगी? वो ना शुक्री बहुत करती हैं खामदों की, और लानत बहुत भेजती हैं। आज लानत के ऊपर भी बात आ जाएगी। तो खास तौर पे कहा गया है वला तकफुरूनी, मेरी नाशुक्री ना करना। और हम चेक करें हमारी जिंदगी में कितनी नाशुक्रिया, जब भी आप जुबान खोलते हैं ना ये कहने के लिए, हाय ऐसा क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, इससे शिकायत उससे शिकायत उससे शिकायत, ये सब नाशुक्री के कलिमात है, सब में नाशुक्री। हमारे ये जिंदगी में देखें तो शुक्र अदा करें जिन चीजों पर वो ज्यादा है, शिकायत शिकवा जिन चीजों पे करें वो बहुत ही कम है, वो कोई एक होगी, दो होंगी, चार होंगी, मगर नेमतें कितनी मिली हुई हैं, अनगिनत। और कोई नेमत है तो कहीं कोई चीज खराब भी हो जाएगी, कहीं कोई चीज से तकलीफ भी पहुंच जाएगी। जो नेमत है तो फिर मसलन गाड़ी है, गाड़ी है तो कभी खराब भी हो सकती है ना, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कभी वो बदतमीजी भी करेंगे, घर है शुक्र है छत है तो कभी घर में कोई छोटी मोटी मसले भी आ जाएंगे, रिपेयर भी होगी, कोई कुछ भी होगा, शौहर है तो फिर ही कोई ना कोई उससे शिकायत भी होगी। और अगर इतनी शिकायतें और सोचे ये चीजें ही ना होती तो क्या होता, ये नेमतें होती ही ना तो क्या होता, तब हम मांगते ये नेमतें और हम कहते कि अल्लाह हमें ये नेमत दे दे। आज हैं तो हम इतनी नाशुक्रियां करते और जगह जगह पे करते, उठते बैठते करते। अगर मौसम बादल आ जाए तो हाँ ये बादल आ गए आज, फिर बादल, सूरज निकला होता तो अच्छा था, सूरज निकल जाए तो फिर कहते हैं लोग बारिश ही नहीं हुई इतने दिन से, बारिश होनी चाहिए थी, ऐसा मौसम हो तो कितना मजा है। आप देख लें बनी इसराइल की क्या बात बताई गई, उनको अल्लाह ताला ने मनो सलवा दिया तो आगे से क्या कहने लगे, हमें ककड़ी दे दो, हमें प्याज और ये चाहिए, हमने वो खाना, वो उस हाल में भी ना खुश हुए, उनकी नाशुक्री भी आपको वहां पता चली है ना। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो जो उम्मत वसत है, जो बेहतरीन उम्मत है, इसकी नाशुक्रियां देखें, नाशुक्री से निकलेंगे तो कोई काम करेंगे ना। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो नाशुक्री ना करना, मेरा शुक्र अदा किया करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने दे दिया, इसकी वजह से जन्नत में बहुत ऊंचे दर्जे मिल सकते हैं, और यही उम्मत पे सबसे पहले जन्नत में एंटर होने वाली ये उम्मत होगी। अब इस पे तो फूले नहीं समाएंगे, लेकिन वो अपना काम तो करे। मसलन एक बंदा है, मसलन आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी जो होता है, जो जर्नैल होता है, कितना बड़ा होता है और कौन नहीं बनना चाहेगा, और उस लाइन में कितने लगे होते हैं और इसको बड़ी फखर का बायस बनते समझते हैं। लेकिन वो क्या फिर करता है, इतना बड़ा ओहदा पाके क्या घर जाके सो जाता है, और इधर उधर उसने बिजनेस शुरू कर दिया और बस कुछ नहीं करा, नहीं, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, अब पूरी फौज की जिम्मेदारी और अमनो अमान की जिम्मेदारी उस पर है। अगर कहें कि भाई हाँ आपने टाइटल तो ले लिया, अब बस मौज मस्ती करते फिरें, तो ऐसा नहीं है। इसी तरह उम्मत वसत आप बन गए तो अब जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के साथ ही आपका तमगा है, आपके स्टार्स उस जिम्मेदारी की वजह से हैं। ये नहीं है कि फिर आप कुछ भी ना करें और बस खुशी होते रहे, हम तो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो अब इस जिम्मेदारी को पाने के बाद जब आपको ये पता चल गया तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप वही है जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने कदम रख दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इंसान पहले खुद इस दीन को समझे सीखे, तभी किसी को जाके कुछ बताने के काबिल होगा। अगर आज आपको कह दिया जाए आप अभी दूसरे पारे पे हैं कि जाएं आप घंटे की तकरीर करें अपने दीन इस्लाम पे, तो दो चार जुमले बोलने के सिवा आपको कुछ आएगा ही नहीं। तौहीद पे करें, अल्लाह ताला की मार्फत पे करें, अल्लाह ताला के बारे में बताएं, वो समझ ही नहीं आएगी क्योंकि आपने ये इल्म लिया ही नहीं होगा। तो पहली सीढ़ी क्या है, पहला स्टेप क्या है, इल्म लेना, उसके बाद आप इसके लिए तैयार होंगे कि दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, आपको जितना भी शौक हो और कितना ही इस मिशन को आप समझ चुके हो, आप इस मिशन को पूरा कर ही नहीं सकते जब तक आपको खुद ही कोई इल्म ना हो। इसलिए ये इल्म लेना इतना ज्यादा जरूरी है। अब देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद हासिल करो सबर के जरिए और नमाज के जरिए। ये क्यों कहा गया, इसलिए कि जब हमने ये जान लिया कि उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी ये है, जो बहुत बड़ा काम है, इस काम को करने के दौरान जब इस मिशन पे निकलेंगे तो मुश्किलात तो आएंगी, मुखालफतें भी होंगी, लोग आपसे खिंचे खिंचे भी रहना शुरू कर देंगे। आप आगे पैगाम पहुंचाना तो छोड़ ही दें, सिर्फ इतना सही आप देख लें, आप इस कुरान की तरफ ही आते हैं ना, अभी आपने पहली सीढ़ी पे कदम ही रखा। तो जाहिर है कुछ चीजें आपको गलत लगने लगती हैं, फिर आप किसी को नसीहत करने लगते हैं। जब आप नसीहत करते हैं तो कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता, और इवन आप अपने घर वालों को भी नसीहत करते हैं तो किसी को पसंद नहीं आती। अब ऐसे वक्त में फिर क्या होगा, फिर लोग मुखालफत करेंगे, फिर लोग कहेंगे ये क्या तुमने शुरू कर दिया कोर्स, ये तुमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो हमारे ऊपर ही अब मसले आ गए, अब तो ये हमें लेक्चर देती हैं, अब ये हमें परेशान करती हैं। तो ऐसे वक्त में सब्र के साथ चलते रहना है, जम के रहना है। सब्र क्या चीज होती है? असल सब्र का लफ्ज तो हमने बहुत दफा पढ़ा होगा, सुना होगा, सब्र करो। ये सब्र होता क्या है? देखिए सब्र तीन मौके पे सब्र होता है, पहले तो ये देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको सब्र के असल माने बताऊं। तीन मौके वो कौन से हैं सब्र के? सब्र होता है जिसको हम कहते हैं मुसीबत पर, हमें तो सिर्फ उसी सब्र का पता है ना, कि जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो उस वक्त हम कहते हैं जी सब्र करें सब्र करें, ठीक है, वो भी सब्र है, वो एक सब्र है, ठीक है। लेकिन सब्र सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हो जाता, मुसीबत के वक्त, दुख के वक्त सब्र करना, एक और सब्र भी है। तीन किस्में हैं सब्र की, हराम और गुनाहों के कामों को छोड़ने पे सब्र करना, क्योंकि वो दिल नहीं चाहता, इंसान उन गुनाहों का आदी हो चुका होता है, अब उन गुनाहों में मजा आता है, अब वो हैबिट बन जाती है, आदत बन गई है, अब पक्के हो गए हैं, तो अब उनको छोड़ना इतना मुश्किल होता है, उसके लिए क्या चाहिए? सब्र चाहिए। और नंबर थ्री क्या है? इताअत पे, नेकी के काम पे सब्र। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि जब आप घर वालों को कोई बात बताएंगे, कोई चीज शेयर करेंगे, तो कहेंगे अब आप लेक्चर शुरू कर दिया आपने अपना, और आप तो बस डांट रही हैं हमें, चाहे वो डांट नहीं भी हो, उनको डांट लगने शुरू हो जाएगी, उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या करें, या फिर घर वाले ताने देना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या शुरू करती है, अब इसमें क्या करना है? कोई कहेगा आपसे ये तुम क्या, ये कुरान पढ़ना और ये सब कुछ तो पता ही है हमें, क्या जरूरत है इसकी, इससे बेहतर है कोई जॉब कर लो। और इससे भी मिलेगा क्या, कौन सी डिग्री मिलेगी, उसके बाद कहाँ पे जॉब मिलेगी? यानी हमें ये होता है कि जो हम पढ़ें सीखें, जिसके लिए हम वक्त लगा रहे हैं, इसके बाद इसका कोई माली फायदा होना चाहिए, कुछ माल आना चाहिए, कुछ पैसे नहीं आ रहे तो इसका फायदा क्या? तो हम यहाँ पे देखें कि नेकी के काम के लिए भी सब्र चाहिए होता है, कि इंसान जम जाए उसके ऊपर। तो यहां से हमें तीनों बातों से क्या पता चला, कभी एक्सट्रीम रिएक्शंस शो करने से रुक जाना वो सब्र है, कभी किसी चीज को छोड़ देना सब्र है, और कभी किसी चीज पे जम जाना सब्र है। ये तीनों मैंने आपको बातें बताई हैं ना। सब्र एक चीज नहीं है कि हम कहेंगे बस सब्र ये मतलब है कि अब मैं ना रोऊं या ना चीखूं तो ये सब्र है। हमें क्या ये नहीं पता कि गुनाह से अपने आप को रोक लेना भी तो सब्र है? आपका दिल करता है कि आप भी ऐसे घूमें जैसे बाकी लोग घूम रही हैं, बाकी ख्वातीन बेपर्द घूम रही हैं, आपका भी दिल चाहता है वैसे, लेकिन आपने अपने आप को कवर किया हुआ है। अब इस नेकी पे जमने के लिए आपको सब्र चाहिए, तो इस्तकामत भी सब्र है। आप क्लास में आती हैं, इसके लिए भी सब्र चाहिए होता है, बैठना यहाँ पे इतनी देर, सुनना, नोट्स बनाना, ये सब्र है। और फिर कभी दिल नहीं भी चाह रहा होगा आपका, आज बिस्तर से उठने का ही दिल नहीं चाह रहा, उस वक्त खुद को उठाना, क्योंकि आपने इस्तकामत से चलना है, जमना है, ये सब्र है। क्योंकि जब आप सब्र वालों का रिवॉर्ड सुनते हैं, कितना बड़ा रिवॉर्ड है, जानते हैं आप उनका रिवॉर्ड? कभी आपने सोचा है सब्र का क्या रिवॉर्ड है? हमने ये तो सुना है सबर करो सबर करो सबर करो, इस मिलेगा क्या हमें? हमें तो लगता है कि सबर है बस, अंधेरा है बस, इसका मतलब है कि बस कंबल लेके सो जाओ, सबर हो गया। क्या करना मैंने सबर करके, कुछ मिलेगा? जी देखें, कयामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा, सबर करने वाले कहाँ हैं? तो कुछ लोग उठेंगे, उनको कहा जाएगा आप जन्नत की तरफ चलें। और जब जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, फरिश्ते उनको देख के पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं। वो कहेंगे अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ, आप कैसे जा सकते हैं? वो कहेंगे हम हिसाब किताब के बगैर ही जन्नत में जाएंगे। वो कहेंगे आप कौन लोग हैं? तो ये लोग कहेंगे हम सबर करने वाले हैं। तो किस चीज पे सबर किया इन्होंने? वो कहेंगे हमने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करने पे सबर किया, क्योंकि आज देखिए कितनी टेम्पटेशन है बाहर, हर चीज आपको इधर से उधर खींच रही है, और कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आपको सर पे डंडा लेके खड़ा वाके नहीं, आपने ऐसे ही करना है, कोई भी नहीं, ना तो कोई फरिश्ते हैं जो आपसे कराने के लिए खड़े हो, ना हमारे पेरेंट्स हैं कि जो हमें कहेंगे कि नहीं अब तुमने ये नहीं करना और ये करना। पहले तो जब छोटे होते पेरेंट्स डांट डपट करके पढ़ाई पे बिठा देती हैं, तुमने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, तुम इस वक्त उठो इस वक्त बैठो, जगाते थे नमाज के लिए भी या और कामों के लिए मना करते हैं, पाबंदियां होती हैं, हम बड़े चिढ़ते थे रिस्ट्रिक्शंस पे, लेकिन जब बड़े हो गए तो हमें आजादी मिल गई, अब हम जो मर्जी करें जिधर को मर्जी जाएं, कौन हमें पूछने वाला है, और अगर कोई पूछ के दिखाए तो फिर हम बहुत बिगड़ते हैं। तो क्या चीज है जो हमें सीधा रखेगी? अब ये चीज कि हमने सबर करना है, और सबर से मदद लेनी है, क्योंकि जब लोग आपको कहेंगे ताने देंगे इस नेकी के ऊपर जिस पे आप चल रहे होंगे, अल्लाह तआला को राजी करने के लिए जो आप कदम उठाएंगे, लोग आपकी मुखालफत में खड़े होंगे, आपने सब्र के साथ जमे रहना है, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने सब्र किया अल्लाह की फरमा बरदारी में और उसकी नाफरमानी से बचते रहे, यानी गुनाहों से बचने पे भी सब्र किया, और मरते दम तक सब्र किया और जमे रहे, यानी ये नहीं कि बस थोड़ी देर के लिए आज तो लेक्चर सुना तो बड़ा सबर है और फिर अगले दिन वो तो बेसब्री है इतनी के बस। बेसब्री नाशुक्री तक पहुंचाती है ना, जब हमारे अंदर सबर नहीं होता तो फिर हम कहते हैं ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, नाशुक्री के कलिमात ऐसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं हम मरते दम तक सबर करते रहे जमे रहे। फरिश्ते कहेंगे फिर तो ठीक है, बेशक तुम्हारा यही बदला है, जाओ तुम जन्नत में जाके मजे करो, अच्छे काम करने का वालों का यही अजर है। तो इनको उनका अजर भी गैर ही हिसाब मिलेगा, बगैर हिसाब के इतना ज्यादा, और बेहिसाब भी मिलेगा, और वैसे इनका हिसाब किताब भी नहीं होगा। अल्लाह हू अकबर। तो इंसान ये सोच के सबर करता है कि मुझे इसका अजर मिलना है, तब सबर भी आसान हो जाता है, वरना सबर जो है ना वो बड़ा कड़वा होता है, इतना आसान नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सबर के माने क्या होते हैं। सबर वो वाला एक सबर है जिसको आप सबर समझते हैं, कि अगर आपको कोई सदमे में कह रहा हो सबर करो तो वो एक सबर, लेकिन ये सब सारे सिनेरियोस हमने देख लिए, तो सबर क्या समझ आया कि क्या है, तो इसको लिख लें। हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सूरत हाल जिंदगी में पेश आए, चाहे वो गम की है, चाहे वो खुशी की है, चाहे वो नेकी की है, चाहे वो बदी की है, चाहे कोई भी चीज आपके सामने आ रही है, उस पे एक है नेचुरल रिएक्शन जो अंदर से आता है, फितरी रद्दे अमल, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अगर इंसान अल्लाह के हुक्म की वजह से रुक जाए अपना नेचुरल रिएक्शन शो करने से, तो यही सबर है। अब वो गम का मौका है, तब भी नेचुरल रिएक्शन क्या है? क्या हम आप देखते हैं ना कि सबर के कौन कौन से मौके होते हैं? तो कोई भी सदमा आए, इंसान का दिल करता है वो चीखे चिल्लाए शोर करे आसमान सर पे उठा ले, मगर इंसान खुद को रोक लेता है नहीं ये मैंने नहीं करना, आंखों से आंसू बहले लेकिन मैंने वावेला नहीं करना, मैंने मातम नहीं करना, मैंने बुरे अल्फाज जुबान से नहीं निकालने, ये है सबर। ठीक है, तो ये अपने आप को बाज रखना, सबर। अब खुशी का मौका आया, उसमें भी क्या सबर होता है जी। खुशी का मौका आया, नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? उछल कूद, ये अल्लाह की नाफरमानी, वो नाफरमानी। बाज लोग तो ऐसी पार्टीज रख लेते हैं कि जिनके नाम आप दे सकते हैं, मेहंदी, ढोलकी, कवाली नाइट, शादी भी, इवन शादी पे भी नाफरमानी के ऐसे काम कर रहे होते हैं, या पार्टी टाइम, सेलिब्रेशन, ये सारे नाम रख के उसमें वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो नाफरमानी करते हैं, नाच रहे हैं, म्यूजिक है, मिक्स गैदरिंग्स हैं, और बस। और अगर कोई कहे कि देखें सबर सबर के साथ, तो कहते हैं क्यों हम अपनी खुशी का इजहार ना करें, हम खुशी कर रहे हैं। तो खुशी में भी हदें नहीं फलांगनी, ये है सबर। समझ आइए, आपका नेचुरल रिएक्शन क्या है कि आप आज बस खुशी में ऐसे पागल हो जाएं कि नाच नाच के आप पागल हो रहे, नहीं, तब भी अपने आप को संभालें, कंट्रोल करें खुद को। जबकि आपके पास पैसा भी है, आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास सब चीजें, कर सकते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर। इसी तरह आपके पास पैसा है, आप उड़ा रहे हैं उसको, शादी पे, किसी चीज के ऊपर आप इतना उड़ा रहे हैं उसको, बेदरे उड़ा रहे हैं, नहीं, सब्र, कि ये भी अल्लाह की नाफरमानी है पैसे को जाया करना। इसी तरह किसी ने बुरा भला कह दिया, आप नेचुरल रिएक्शन क्या आया, अभी मैं इसको सुनाती हूँ, इसकी मिजाल कैसे हुई मुझे ये कहने की, आपने फोन पकड़ा और वो सुनाई उसको कि बस। अब यहां पर अगर आप अपने आप को रोक लेते हैं तो ये है सब्र। इसी तरह आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, आप इस वक्त जॉब करके पैसे भी कमा सकते थे, आप इस वक्त कोई और भी काम कर सकते थे, घर के काम काज कर लेते, कुछ और कर लेते, बाहर शॉपिंग के लिए निकल जाते, घूमते फिरते, पिकनिक करते, पार्टी टाइम करते, लेकिन आपने अपने आप को अल्लाह के दीन को सीखने के लिए डेडिकेट किया, ये भी सबर है। तो सबर मैंने आपको जैसे बताया, कहीं पे तो जम जाना सबर है, जैसे यहां पर इस आयत में सबर का माना इस्तकामत है, जम जाओ, यहां पे ये माना है, कहीं रुक जाना सबर है, कहीं कूद पड़ना सबर है, जैसे असाबुल खदूद थे, जब वो जब बादशाह ने वो उन लोगों को आग में डालना शुरू किया, आपने पढ़ा है असाबुल खदूद के बारे में सूरत अलबुरूज में, तो माँ के पास बच्चा दूध पीता बच्चा था, और उसको एक लम्हे के लिए ये आया कि हाय मेरा बच्चा आग में जल जाएगा, आग के बड़े बड़े गड़े थे उसमें लोगों को डाला जा रहा था, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस बच्चे को गोयाई की ताकत दे दी, सलाहियत दे दी, और वो उस बच्चे ने कहा ए माँ सबर कर, तू हक पे है। यहां पे सबर करना क्या है, रुक जाना, नहीं यहां पे रुक के बैठ जाना नहीं है, आग में अब कूद जा। तो सबर एक चीज नहीं, सिचुएशन के मुताबिक है सबर, किसी में टकरा जाना सबर है, किसी में रुक जाना सबर है, किसी में अपना नेचुरल रिएक्शन शो ना करना अल्लाह के हुक्म की वजह से, वो सबर है। और सबर हमेशा सदमतुल उला पे होता है, यानी जो ये सदमा आया वो टाइम होता है सबर करने का। लोग पहले खूब वावेला कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा जी हमने सबर किया, अब सबर तो आ ही जाना, अब तो सबर का क्या फायदा, अब उस पे अजर नहीं है। सबर पे अजर वो है जब इंसान शुरू में सबर करता है। तो यहां पर ये है कि जब आप सताए जाओगे, ये रास्ता ना कांटों का रास्ता है, ये फूलों की सेज नहीं है, जो दीन का रास्ता है, दीन के रास्ते पे चलना आसान नहीं होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर एक दौर ऐसा आने वाला है जो डटे रहने का दौर है, डटने का दौर है, यानी जमने का दौर है। क्यों, कैसे जमने का दौर है, फरमाया कि उस दौर में दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा कि जैसे हाथ में अंगारा लेना, आग का अंगारा ले लिया आपने, जैसे मुखालफत इधर से मुखालफत उधर से मुखालफत, कोई कुछ कह रहा है, कोई दोस्तें कुछ कह रही हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ कह रहे हैं, सभी खिलाफ हो गए। अब इंसान रोने बैठ जाता है, कहता है छोड़ो इस बात को। किसी ने कहा मेरी सास मुझे ताने देती है कि तुम बड़ी क्लासें लेती हो और फिर तुम ये करती हो ये करती हो, तो इसलिए अब मैंने छोड़ ही देना, उसने छोड़ दिया। ये सब्र के खिलाफ है। सब्र यही तो है कि लोगों के तेज तन जुमलों के ऊपर भी इंसान कहे कि नहीं मैंने सब्र से चलते रहना। तो सब्र हर जगह पे आपको काम आएगा, इसीलिए फरमाया सब्र कर से मदद लो, ये चीज है जो तुम्हें हेल्प करेगी कि तुम ठान लो कि मैंने सब्र करना है। देखिए जितना ज्यादा मुश्किल दौर होगा ना, जब यहाँ पे जैसे इस हदीस में कि आग का अंगारा हाथ में लेने के बराबर होगा, उस वो डटने का वक्त है, फरमाया डटे रहना उस वक्त, उस वक्त ऐसा दौर आने वाला है लोगों के ऊपर, तो यानी आपको उस वक्त भागना नहीं है, भगौड़े जो होते हैं ना वो किसी काम के नहीं होते, जमना है उस वक्त। इस दौर में फिर जब इतना मुश्किल हो जाएगा दीन पर चलना, तो जानते हैं इसका अजर क्या है? फरमाया उस वक्त जो इस दीन पर चलेगा उसका अजर 50 के बराबर होगा, 50 के। तो सहाबा ने फौरन पूछा या रसूल अल्लाह 50 हमारे या 50 उनके जमाने के जो लोग हैं उनके बराबर उसका अजर होगा? फरमाया नहीं, तुम्हारे 50 के बराबर। यानी मुश्किल दौर में अजर भी बढ़ जाता है। अगर आपके रास्ते में मुश्किल आती हैं, सोचें आपके सवाब भी बढ़ जाएंगे। एक बंदा उसको कोई मुश्किल नहीं आती, उसके घर में सारे उसके फेवर में हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसके लिए पार्टीज करती हैं, जब वो कोई चीज अचीव कर लेता है इस मकाम में आगे बढ़ता है, उसकी ग्रेजुएशन पार्टी हो रही है, उसके हार पहनाए जा रहे हैं, उसको गिफ्ट मिल रहे हैं, उसकी तारीफें हो रही हैं, तब तो चलना बड़ा आसान है। लेकिन एक बंदा मुखालफत में चलता है और रोता है कि मैं करूं तो करूं क्या, या अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मैं तो तेरे दीन पे चलने की कोशिश कर रहा हूं ना, कहीं घर वालों की तरफ से, कहीं बाहर वालों की तरफ से, कहीं जॉब की तरफ से, कहीं किसी और की तरफ से। तो जब इतनी मुखालफतें आती हैं तो वो हिम्मत हारने लगता है, तो कहा गया नहीं तब नहीं, सबर करना है। तो तुम्हारा अजर बहुत ज्यादा है, उसको उसके बराबर नहीं मिलना जिसको सारे फेवर कर रहे हैं, इसका अजर बहुत बढ़ के है। हमारी बहुत सारी बहनें जो अपने घरों में इस तरह से पढ़ाई करती हैं कि उनको छुप के करनी पड़ती है, इतनी उनको मुखालफत है, लेकिन फिर भी वो जमी रहती हैं, चलती रहती हैं। आप क्या सोचते हैं अल्लाह ताला नहीं देख रहा उनकी मेहनतों को, उनकी इस परेशानी को, और उनके छुप छुप के अल्लाह के दीन को सीखने को? तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नमाज से सबर पहले और फिर नमाज, क्योंकि सबर होगा तो नमाज के लिए भी खड़े होंगे ना, नमाज क्या है, अल्लाह ताला के साथ हम कलामी है। जब इंसान सज्दे में जाता है ना उसके आंसू टप टप बहने लगते, ये अल्लाह तू तो जानता है ना, तुझे मेरे हाल का पता है, मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूं। वो मुकालमा है, नमाज मुकालमा है, बातचीत है अल्लाह ताला के साथ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुश्किल आती थी ना दौड़ते थे नमाज की तरफ, कि नमाज में सुकून था उनके लिए। जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे चलने लगता है नमाज उसको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि किसको कहें किसको समझाएं, कोई समझता भी तो नहीं है, अल्लाह तू तो जानता है मेरे दिल का। फिर वो नमाज में हाथ बांध के खड़ा हुआ है तो ऐसे है जैसे वो है और उसके सामने उसका रब है, और सारा दुखड़ा उसके आगे रख लेता है, रो देता है उसके आगे, उसका दिल हल्का हो जाता है, फिर वो दोबारा हिम्मत करके फिर से खड़ा हो जाता है। तो नमाज हेल्प करती है। और इसीलिए फरमाया कि ऐसे जो सबर करने वाले हैं तो फिर इन्नल्लाह मा सबिरीन, याद रखो अगर तुम सबर करने वाले ना, अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ता नहीं है। तुम्हें ऐसे लगता है ना कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, सब मेरे मुझे कोई ताना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो सबर वाला है उसको अल्लाह ताला कभी तनहा नहीं छोड़ता। सबर बड़ी बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए देखें तालूत और जालूत की उसमें कहानी आगे आएगी इस पारे के एंड में। तो उन लोगों ने जो हक पर थे उन्होंने भी अल्लाह ताला से सबर मांगा कि अल्लाह हमें सबर दे देना, हम जम जाएं जालूत के मुकाबले में। और फिर फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी कहा कि अल्लाह हमें हमारे ऊपर सबर उंडेल दे। जब कोई ऐसी मुश्किल आई जिसमें आपको लगे कि मुझे लगता है कि मैं जम नहीं पा रही, मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगी, मुझे डर लगता है कि मैं ये छोड़ दूंगी, मैं इनकी बातों में ना आ जाऊं, कहीं मेरे ऊपर इतना प्रेशर ना हो जाए इन लोगों का कि मैं ये सब छोड़ के भाग निकल जाऊं, उस वक्त सबर मांगा करें। रब्बना अफरिग अलैना सबरन, ऐ हमारे रब हमारे ऊपर सबर उंडेल दे। और सब्बित कदामना, हमारे कदमों को जमा दे या अल्लाह। तो सबर अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको देगा। तो सिर्फ सदमे के ऊपर सबर नहीं, नेकी पे जमने पे भी सबर मांगा करें, गुनाहों से बचने भी सबर मांगा करें। बाज दफा ऐसा होता है हम किसी गुनाह से तौबा कर लेते हैं फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती, फिर हम उसमें जाके फंस जाते हैं, फिर हमसे वो हो जाता है, तो उस वक्त भी सबर मांगे, या अल्लाह तू मुझे सबर दे दे कि मैं ये गुनाह में दोबारा ना पढ़ूं। अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। साथ का मतलब ये नहीं कि दुनिया में साथ आ जाएगा, साथ का मतलब जैसे कोई बादशाह कह देना तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या मजा होता है, बादशाह आपके साथ तो नहीं चल पड़ा ना, मतलब है कि मेरी मदद तुम्हारे साथ है, मेरी नुसरत तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा मैं जो तुम्हारे साथ। तो ये बात कितनी तसल्ली देती है एक ऐसे इंसान को जो दीन की खातिर कितनी बातें सुन रहा हो कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ, मैंने बस इस रास्ते को नहीं छोड़ना। और अल्लाह ताला हालात फिर बदलता है और यकीनन बदले जाते हैं, लेकिन सब्र की जरूरत होती। अगर आप भाग जाते हैं ना, आज किसी ने कुछ कह दिया बस अगले दिन ही मूड ऑफ हो गया, हाय हाय मुझे फलाने ने कह दिया, जो ऐसे छुई मुई किस्म के लोग होते हैं ना वो नहीं इस रास्ते पे चल सकते, क्योंकि दीन का रास्ता मुश्किलात का रास्ता है। अगर आप छुई मुई हैं फिर आप यहीं से वापस चले जाएं, आप आज नहीं तो कल आपने छोड़ ही जाना है, क्योंकि ये जमने का रास्ता है, ये डटने का रास्ता है, ये सबर का रास्ता होता है। इसी वजह से कई लोग ऐसे हैं, आते हैं बस दो चार लेसन लिए और उसके बाद वो जी थक के जी अब हमारे पास और कोई काम है, अब हम वहां जा रहे, फिर थोड़े महीनों बाद फिर आ जाते हैं, अब हमने फिर से ज्वाइन करना है। तो पहले क्या हुआ था, वो पहले ये मसला हो गया था, फिर 2 महीने किया, फिर उसके बाद फिर फारे। जब सबर ही नहीं है तो फिर कैसे चलेंगे, ऐसे लोग कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते। ये सफर वो ही पूरा कर पाता है जो सबर से चलता रहता है। जिंदगी में चीजें आएंगी, कभी बच्चा बीमार, कभी जॉब से कोई मसला हो गया, कभी घर में कोई झगड़ा हो गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कोई परेशानी आ गई, कभी खुशी का कोई दिन आ गया, लेकिन सबर से चलते रहना, क्योंकि इन्नल्लाह मा सबिरीन। कितनी बड़ी बात है, हमें दुनिया का कोई बादशाह कह दे मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई वजीर कह दे, हम कहते हैं कि बस आप तो किसी की परवाह ही नहीं, ये उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दिला दी है, ये उनके बंदे हमारे साथ हैं, वो फलाना हमारे साथ है। और अल्लाह ताला कह दे मैं तुम्हारे साथ हूं तो सबर मुश्किल बहुत है, कंट्रोल करना है अपने आप को, सबर इज सेल्फ कंट्रोल। चाहे खुशी है चाहे नेकी का काम है उसमें भी सेल्फ कंट्रोल जमना है, चाहे गुनाह है उसमें भी सेल्फ कंट्रोल नहीं इस तरफ को जाना, चाहे तकलीफ है कोई परेशानी है कोई मुसीबत आ गई उसमें भी सेल्फ कंट्रोल। तो आज अगर हम यहाँ पे बैठते हैं क्लास लेते हैं सबर करते हैं तो आप देखेंगे फिर और कामों में भी सबर आने शुरू हो जाएगा। और फिर ये चीज आपके लिए कोई मुश्किल रहेगी ही नहीं। जैसे जो लोग पहले से कर रहे हैं वो कहते हैं हमारे तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब क्लास शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सबर किया था शुरू में, है किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो सबर से चलते जाइए, और इल्म लेने के लिए भी सबर चाहिए। ये कोई मिक्सचर नहीं है जो आपको एक ही दिन पिला दिया जैसे सारा इल्म आ गया। हम चाहते हैं एक दिन में ही बस सारा सीख लें, बस जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, सब्र से चलते रहे। जो आप देखे खाना भी आप हल्की आंच पे पकाते हैं ना, वो ही अच्छा बनता है। उसमें भी आप बेसब्री करें, तेज आग जला के छोटी सी हांडी रखी हुई ऊपर, तो आग इतनी तेज लगे तो क्या होगा, आधा जला हुआ खाना होगा। नहीं, सब्र के साथ। अगर हम सिर्फ इतनी बात को समझ जाएं आज के दिन के हमने बस चीजों के ऊपर सब्र करना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में आपके पास अल्लाह ताला की मदद ऐसे रास्तों से आएगी कि आपको जहां से पता भी नहीं चलेगा। वला तकूलु लिमन युकतलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उसको जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया गया मुर्दा, यानी अब ये ना कहो कि वो मर गया है, ये मत कहो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। यानी इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में चलने में कभी जान की बाजी भी हार देनी पड़ेगी, कभी तसादुम होगा, कभी जान से भी इंसान जा सकता है ईमान की खातिर। तो जान भी चली जाए ना, तो उसकी ऐसे बंदे पे मातम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो मुर्दा है ही नहीं, वो तो जिंदा है। क्या वो जिंदा है? क्या ऐसे जिंदा है जैसे हम जिंदा है? नहीं, ऐसे नहीं। बाज लोग इसको गलत सेंस में ले लेते हैं और वो समझते हैं कि इसी तरह जिंदा है जैसे आज हम बैठे हुए जिंदा यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो भी ऐसे ही जिंदा है, बस कब्र के अंदर है, तो लो चलो आओ फिर, वो जिंदा ही है तो चलो आओ उनसे मांगते हैं जाके। नहीं, उस तरह की जिंदगी नहीं मुराद है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम इसका शऊर नहीं, तुम इसको समझ नहीं सकते। तो वो तो हम समझ सकते हैं जो हमारी ऐसी जिंदगी, इसको तो हम समझ सकते हैं। वो एक और जिंदगी है। वो कौन सी जिंदगी है? बरजख की जिंदगी। लेकिन उसका शऊर हमें नहीं है। और ये हर एक के लिए, वैसे तो हर एक के लिए है कि एक बरजख की जिंदगी है, लेकिन जो शहीद है ना, उसकी तो ऐसी जिंदगी है बरजख में कि जैसे हमें हदीस से पता चलता है, हम शऊर तो नहीं इसका कर सकते, हम इसको पूरी तरह समझ तो नहीं सकते, लेकिन वो ऐसी जिंदगी है कि मुस्लिम की हदीस में है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के दिलों में, और जन्नत में चरती चुगती उड़ती फिरती हैं जगह जगह, फिर उन कंदीलों में आके बैठ जाती हैं। समझ लें जैसे शैंडलियर्स होते हैं ना, उस तरह उनमें आके बैठ जाती हैं जो अर्श के नीचे लटक रही हैं। अल्लाह हु अकबर। और इन इनके रब ने एक मर्तबा उनको देखा और उनसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह हमें तो तूने वो देख रखा जो किसी को भी नहीं दिया, फिर हमें किसी चीज की क्या जरूरत है। अल्लाह हु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तमन्ना की थी ना कि मेरा मेरे दिल करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं और शहीद हूं, और अल्लाह के रास्ते में लड़ूं फिर जिंदा किया जाऊं फिर लड़ूं और शहीद हूं। तो बार बार इसी तरह तो उनसे भी अल्लाह ताला पूछेगा ना, अब तुम क्या चाहते हो? तो वो जवाब देती हैं, ए अल्लाह हमें तो तूने सारा कुछ दे रखा है जो किसी को भी नहीं दिया, हमें तो किसी चीज की भी जरूरत नहीं। फिर उनसे यही सवाल होता है, फिर उनसे यही सवाल होता है, जब वो देखते हैं कि कोई भी जवाब देना जरूरी है, मतलब अब किसी जवाब से भी हमारे इससे तसल्ली नहीं हो रही, तो फिर कहते हैं ए अल्लाह हम चाहते हैं तो हमें एक दफा दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरे रास्ते में फिर लड़ें फिर शहीद हों और शहादत का दुगना दर्जा पा लें। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने लिख दिया कि कोई भी मरने के बाद दुनिया में पलट के जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो वो वहां पे जन्नतों में चरते चुकते हैं, और फिर शहीद को जान निकलने की इतनी बस तकलीफ होती है जितनी की चूंटी के काटे की, बस इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। तो जो अल्लाह के रास्ते में सताए जाएं, जैसे आज भी कई मुसलमान हैं गज़ा में जो शहीद किए गए अल्लाह के रास्ते में ना। और देखिए उनकी जब आप कहानियां सुनते हैं तो वाकई पता चलता है कि वाकई वो अल्लाह ताला के पास जिंदा है। जिस तरह लोगों ने उनको ख्वाब में देखा, जिस तरह से लोग उनकी बातें बनाते हैं और जिस तरह उनकी कब्रों के पास से खुशबुएं उठती हैं, सुभान अल्लाह। बेशक शहादतों के मर्तबे और भी हैं। जो पेट की बीमारी से दुनिया से चला गया वो भी शहीद है, जो डूब के मर गया वो भी शहीद है, जो आग में जल के मरा वो भी शहीद है, जो गिर के मरा वो भी शहीद है। लेकिन जो शहादत का मर्तबा ये है, ये सबसे टॉप का है। देखिए शहीदों की तो कैटेगरीज है ना, उनके भी मर्तबे, ये वाला सबसे टॉप का है। अल्लाहु अकबर। जो अपनी माल की हिफाजत करने में, जैसे लोग होते हैं ना गन पॉइंट पे किसी को रखा और छीनने को कहा, उसने नहीं दी तो उसको गोली मार दी, वो भी शहीद है। तो लेकिन ये बरजखी जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी के साथ नहीं आप इसको रख सकते कि ये ऐसी ही है जैसे यहां पे, नहीं। और सोचें अगर शहीद का ये मकाम है तो अंबिया तो इससे भी ऊपर मर्तबे पे होते हैं, वो तो शहीद से भी ऊपर मर्तबा है ना। तो उनकी फिर जिंदगी कैसी होगी, उनकी तो इससे भी ज्यादा ऊपर की होगी। लेकिन अगेन ये बात गलत है कि वो अपनी कब्रों में जिंदा बैठे हुए, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं और इस तरह, वो उस तरह से नहीं है, वो एक और जिंदगी है। और ये सारा देखिए, ये जो आपको सारा उम्मते वसत का बताया गया था ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें ये समझने चल रही हैं। वला नब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता जरूर ब जरूर तुम आजमाए जाओगे, यकीनन तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान का, जब इम्तिहान लिया जाएगा उसका देखिए सलूशन पहले ही बता दिया हुआ है। वस्ताइनु बिसब्र, इस्ताइनु में ये नहीं, देखिए आपने ये नहीं पूछा सवाल के देखिए मदद मांगी जाए किस चीज में, मदद मांगो सब्र से, सब्र और नमाज तो टूल्स है ना, तो किस चीज के अंदर, क्या चीज, क्या सिचुएशन हो के जिसके अंदर ये हम इससे मदद लें इन दो टूल से। तो कोई भी सिचुएशन, किसी किस्म की भी सिचुएशन, चाहे वो दीन के रास्ते में हो चाहे वो कहीं और कोई दुनिया का मसला पेश आ जाए, उसमें भी यही है। अब क्या यहां पर बताया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है कि बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, क्योंकि ये रास्ता मुश्किलात का है, इसमें आजमाइशें आएंगी। पहले से ये बात समझ जाओ, आजमाइशें आएंगी, हम जरूर बर जरूर आजमाएंगे तुमको। साथ किन चीजों के, किस चीज में आजमाइश आएगी, किस तरह के इम्तिहान आएंगे, इंसान चाहता है कि पता चले। बिशई इन, साथ चंद चीजों के। एक तो पहले ये नहीं कहा गया, हो सकता है तुम्हें आजमा लिया जाए, कहा गया यकीनन जरूर ब जरूर, ताकीदें हैं इसमें। और शई इन नकेरा है ना, चंद चीजों के साथ, कुछ चीजों के साथ, यानी इन जो आगे लिस्ट आ रही है चीजों की, इनमें से कुछ के साथ, किसी को दो चीजों के साथ आजमा लिया जाए, तीन चीजों के साथ, एक चीज के साथ, या उन्हीं चीजों में थोड़ा सी आजमाइश की जाए, शायद छोटी चीज की आजमाइश की जाए, ये नहीं कि पूरी की पूरी ऐसे आजमा लिया जाए। अब जी देखते हैं फिर आपको आगे और समझ आएगा। बिशई इम मिनल खौफ, खौफ से, वल जुअ और भूख से, वह नक्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुस और नुकसान से, मालों के जानों के, वह समरात और फलों से, इन सब चीजों से तुम्हारी आजमाइश हो सकती है। खौफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आजमाए गए। सबसे ज्यादा खौफ का उनके ऊपर वक्त कौन सा था, जंगे आसाब का, जब मैंने सारा अरब उमड़ आया था। अरे छोटी सी मदीना की बस्ती थी, थोड़े से लोग थे उनके मुकाबले में जो आ रहे थे, सारे कबाइल मिलके आ गए थे। वो खौफ की रात बहुत ज्यादा मुश्किल थी, जिसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया। और हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से भी। अब देखें, एक खौफ यहाँ पे भी, आज के दौर में भी खौफ होता है। जैसे मसलन है दुश्मन का खौफ किसी को, हुक्मरानों का खौफ, जंग का खौफ, किसी चीज के छिन जाने का खौफ। बाज़ इलाके ऐसे हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं होता सुबह को घर से निकलेंगे वापस भी आएंगे कि नहीं। ऐसे तो किसी जगह भी नहीं पता, लेकिन वहां पे इतनी बदमनी होती है। फिर भूख, भूख में सब चीज है कि किसी की जॉब चली गई, किसी के लिए महंगाई इतनी हो गई कि जो है ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो कहीं से खरीद सके कुछ खाने पीने को अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। फिर इसी तरह ऐसी कहत साली का आलम आ जाए, कहीं फाके करने पड़ जाएं किसी को। अब देख लें जैसे कई जगह पे ऐसा ऐसे हालात हैं आज भी, अल्लाह ताला माफ करे कि साफ पीने का पानी तक नहीं है। और एक वीडियो में देख रही थी, तो उन्होंने जब उनको सूखे बंस पकड़ाए गए, सूखे बंस, कुछ लगा नहीं हुआ था ऊपर और साथ कोई सालन नहीं था, तो छोटे छोटे बंस थे, वो लोग निकल रहे थे गजा से, तो उनको जब दिए गए तो वो रोने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि ये तो हमारे कितने महीने हो गए हैं कि हमने रोटी का एक टुकड़ा नहीं देखा। तो अल्लाह ताला भूख से भी आजमाइश करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई भी जब इतनी ज्यादा हो जाए, तो कई घरों में सिर्फ नमक मिर्चों के साथ ही खाना खाया जाता है। और नकसिम मिनल अम्वाल, और नुकसान मालों का और जानों का, माल का नुकसान क्या है, जैसे मसलन है कि किसी के पैसे चोरी हो गए, या किसी का कोई इतना बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया, या जॉब में कोई ऐसा नुकसान हो गया, और अनफोर्स और जानों में भी कमी आ सकती है, कोई फौत हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई अगवा हो गया। और समरात और फलों से, फलों से मतलब फ्रूट्स भी हैं, कि जो उस जमाने में तो लोगों के बागात होते थे, और बागों में अगर वक्त के ऊपर फल ना काटा जाए, जैसे तबूक में मुसलमान निकले थे तो फल पके हुए थे, ना काटा जाए तो नुकसान ही नुकसान, पूरे साल की मेहनत तबाह हो जाती थी, गारत हो जाती थी। अल्लाह अकबर। तो एक तो वो माना है, और एक फलों से मुराद फल समर जो होता है ना, नतीजे को कहते हैं कि निचोड़ नतीजा, इसीलिए फल को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतनी मेहनत के बाद वो फिर फल आया होता है। जैसे कहते हैं ना उसकी मेहनत का फल, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रूट लाके मेहनत का कोई दे दें, लेकिन मेहनत का फल होता है कि मतलब मेहनत का नतीजा, ये इसकी मेहनत का फल है कि ये इतने नंबरों से पास हुआ, तो वो फल नतीजे को कहते हैं। तो इससे मुराद बच्चे लिए गए, औलाद। तो औलाद को लूज कर देना, चाहे वो दूर चली जाए, औलाद में से कोई फौत हो जाए, या औलाद छिन जाए, औलाद ऐसी नाफरमान हो जाए, ये सब नुकसानात है ना। तो ये अल्लाह ताला आजमाएगा इन चीजों से। अब जब ऐसी आजमाइशें आती हैं, तो इंसान हड़बड़ा जाता है और सोचता है कि हाय ये क्या हो गया। खौफ में एंजाइटी और डिप्रेशन भी है, वो भी एक खौफ की किस्म है। तो जब इनमें से कोई चीज में भी इंसान आजमाया जाता है, मैंने आपको बताया भी सही, इनसे मतलब यह है कि इनमें से दो चीजों से भी आजमाइश हो सकती, तीन से भी आजमाइश हो सकती, और ये भी मतलब है कि अगर खौफ है तो हर चीज के में नहीं खौफ है, एक चीज का खौफ हो सकता है। अगर माल में नुकसान है तो सारा माल नहीं डूब जाता, किसी वक्त
इंसान के पास माल होता है, किसी वक्त जिंदगी में नहीं भी होता, पहले था अब नहीं है। अगर जानों का नुकसान है तो ऐसा नहीं कि सारी जानें चली गईं, कि एक दो चार फैमिली के मेंबर्स कहीं अगर किसी के चले जाते हैं दुनिया से, तो वो फिर थोड़ा है ना, बाकी तो सारा है। तो कम ऐसा होता है जिसमें खौफ हो, कम ऐसा होता है जिसमें भूख हो, कम ऐसा होता है जिसमें नुकसान हो, बाकी सारे टाइम के अंदर खुशहाली भी रहती है, आफियत भी रहती है, सब अच्छा भी रहता है। ठीक है, तो बिशई इनके दोनों माने समझ ले। अब आजमाइश क्यों आती है, क्या जरूरत है आजमाइश की? पहले भी हमने ये बात की थी रिबत अला इब्राहिमा में, कि इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया, तो मैंने आपको बताया था उस वक्त आजमाइश क्यों आती है, क्या जरूरत है इन आजमाइशों की, हमें तो अच्छी नहीं लगती ना, टेस्ट हमें वैसे ही नहीं अच्छे लगे, इम्तिहान कहाँ हमें अच्छा लगता है। कई लोग इसी वजह से तो नहीं ज्वाइन करते कोर्सेज को, कि उनको इम्तिहान अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला तो फरमाता है तुम्हारा इम्तिहान तो होगा, क्यों? इसलिए कि इम्तिहान से पता चलता है कौन कितना काबिल है, उसकी काबिलियत पता चलती है जन्नत में जाने के, कौन कितना काबिल है, उसको किस दर्जे पे होना चाहिए जन्नत के, वो जन्नत में जाने के काबिल भी है या नहीं है ये भी पता चल जाए, उसका ईमान किस लेवल का है। तो जो हम भी इम्तिहान लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, थोड़ी कि किसी को सताने के लिए हमें बड़ा शौक है, उसकी काबिलियत जानने के लिए इसने कितनी मेहनत की है, इसने कितना पढ़ा है। तो ये आजमाइशें, ये पेपर्स हैं हमारे, ये टेस्ट हैं हमारे, ये पेपर है खौफ का, पेपर है भूख का, पेपर है मालों और जानों के नुकसान को और समरात के, और किसी का कोई पेपर है, किसी का कोई है, किसी को दो तीन पेपर मिले हुए, ये किस पर डिपेंड करता है, किसी के दर्जे पर, किसका दर्जा कितना बुलंद है उतने ही उसकी आजमाइशें बड़ी होती। अंबिया की सबसे बड़ी आजमाइशें हुई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा वो आजमाए गए, फिर उसके बाद जो उनसे कम दर्जे के, फिर जो उनसे कम दर्जे के, दर्जों के मुताबिक आजमाइश होती है, जिसका दर्जा जितना बुलंद होता है आजमाइश भी उतनी ही ज्यादा सख्त होती है, उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। तो आजमाई से ही तो पता चलता है कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में, वरना ऐसे बातें करने को तो हम भी बहुत कर सकते हैं जी, जमीन आसमान के कलाबे मिला ले, मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूं, मैं तो दीन की खातिर ऐसे अल्लाह की खातिर मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जितने मर्जी डायलॉग लिखवा लो, डायलॉग बोलने में क्या है। लेकिन पता तब चलता है जब आजमाइश आती है, जब इंसान को अल्लाह ताला टेस्ट कर लेता है कि तू मेरे काबिल भी है या नहीं। तो इन आजमाइशों में कौन फिर पूरा उतरता, बशीर साबिरीन। यहां पे भी पता चला कि जो सबर कर जाएंगे उनके लिए है खुशखबरी, यानी पास कौन होते हैं इनमें, जो सबर करने वाले, बाकी सब फेल हैं। हाँ जी, तो कभी ये ना सोचना इम्तिहान आएगा ही नहीं, आएगा तो जरूर, और इम्तिहान के पर्चे मुश्किल से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन तुमने क्या करना है, सब्र, नाराज नहीं होना उस वक्त अल्लाह ताला से, शिकवे नहीं करने। देखें जब कोई भी ऐसा इम्तिहान आता है, दो ही रवैये हो सकते हैं ना, या तो इंसान सब्र कर ले या फिर बेसब्री दिखा ले। बेसब्री करने से कोई मुश्किल टल नहीं जाएगी, मुश्किल तो वही रहेगी, मसलन कोई फौत हो गया वो वापस आ नहीं जाएगा बेसब्री करने से, वह वेला करने से, मगर अल्लाह की रजा भी हाथ से गई, जन्नत भी हाथ से गई, सबर कर लेते तो अजर भी मिलते और जन्नत भी और अल्लाह ताला की रजा भी, और सबर करने से दिल भी ठहर जाता है, वरना जितनी बेसब्री दिखाते हैं उतना ही दिल बेचैन रहता है। कई लोग कहते हैं हम निकल ही नहीं पाते इस सदमे से, कोई उनकी प्यारा दुनिया से चला जाता है तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, लेकिन ये इम्तिहान तो हैं। इब्राहिम अलैहि सलाम ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फरमाया था ना, ये मोहम्मद जितनी भी किसी से मोहब्बत कर लो एक दिन तो जुदा होना है, कोई चीज पायदार नहीं है इस दुनिया की। असल में मसला यह है कि हमने इस दुनिया को समझ लिया कि यही असल जिंदगी है, यही असल रहने की जगह है, सबर करने वाला वो ही है। कोई बंदा सबर कर सकता है जिसने ये समझ लिया कि ये दुनिया है ही टेस्ट की जगह। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को किस लिए बनाया? सूरह मुल्क में क्या पढ़ते हैं? हर रात पढ़ते हैं ताकि वो तुम्हें आजमा ले कि कौन है तुम में से जो अहसन अमल करता है। आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए ये जिंदगी बनाई। तो ये इस इम्तिहान के पीरियड में मैं और आप यहाँ पे हैं। किसी को इम्तिहान का पीरियड मिला 50 साल, किसी को 60 साल, किसी बेचारे को 30 32 साल ही सिर्फ मिला, बस उसकी इतनी ड्यूरेशन थी। पर हैं सभी इम्तिहान में, आजमाए जा रहे हैं। किसी दिन कुछ होता है, किसी दिन कुछ होता है। तो फिर जिसने समझ लिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा ले, जिसने ये समझ लिया ना, वो फिर सबर कर सकता है कि मेरी तो जिंदगी है ही आजमाइश, मेरा तो ये है ही इम्तिहान, तो इम्तिहान आना ही है। ये तो अल्लाह ताला ने बताया है, ये तो उसका वादा है कि इम्तिहान जरूर आएगा। जैसे जब ओहद के अंदर जब पता चला मुसलमानों को कि काफिर पलट के आ गए रहे हैं, और किसी ने आके इतला दी कि वो आ रहे हैं, डर जाओ उनसे, वो बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, उन्होंने आगे से क्या कहा? हसबुनल्लाह व नेमल वकील। तो अल्लाह के वादे हैं, ये तो होके रहेगा, इम्तिहान तो आना है। अब हम कहते हैं मेरा ही इम्तिहान क्यों, फलां तो इतना अच्छा रह रहा है। आपको क्या पता उसका किसी और चीज में इम्तिहान चल रहा होगा, किसी का किसी में चल रहा होगा। आप सिर्फ चेहरों को देख के सोचते हैं अच्छा ये बड़ा खुश लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो इसका इम्तिहान नहीं है। हर एक का इम्तिहान है। और इम्तिहान ये भी है कि इन चीजों के साथ आप कैसे फिर अल्लाह के दीन पे जमते हो, ये भी इम्तिहान है। आप फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुकते हो कि नहीं, ये भी इम्तिहान। इसमें ये सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ छीनी जाएगी चीज तो इम्तिहान है, वरना तो इम्तिहान है ही नहीं। नहीं, अब ये भी इम्तिहान है जब आपको खौफ होता है मेरी जॉब चली जाएगी, आए मेरे से ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, दुनिया सारी मुझे पूछती रहे, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो मुझे मेरे से दोस्ती छोड़ देगा, खौफ है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तरह से आजमाए गए, औलाद की तरफ से भी सदमे सहे के जब फौत हो गई, बेटियों की तलाकें भी सही, खुद भी अपनी जान के अंदर भी कितनी मुश्किलात सही, बीवी का भी जाना दुनिया से, प्यारे चचा का दुनिया से चले जाना, और फिर हर वक्त एक कश्मकश, ऐसे हालात, फिर भूख, भूख के साथ भी आजमाए गए। कितनी दफा हम पढ़ते हैं कि पेट पे पत्थर बांध के काम कर रहे थे, किसी ने दिखाया पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया, दो पत्थर बंधे थे, एक पत्थर क्यों बांधते थे? से ताकि फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आए ना, कि जैसे पेट जैसे भरा होता है, वरना तो पेट साथ ही लग जाता है, इंसान से खड़ा ही नहीं हुआ जाता, इतनी भूख हो गई थी। तो इंसान पे आजमाइशें आती हैं, और अल्लाह ताला की मदद का वादा किनके साथ है? जो सबर वाले, सबर के भी दर्जे होते हैं। एक तो सबर है बर्दाश्त कर जाना, बर्दाश्त कर लेना उसको सबर कहते हैं, कि मुंह से इंसान कोई नेगेटिव बात ना निकाले। मगर इससे ऊपर भी एक सबर का दर्जा होता है। इसके ऊपर क्या दर्जा होता है? कि मुसीबत आई है, इंसान कुछ नहीं कह रहा, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मुसीबत में भी अल्लाह से राजी है। अल्लाह मैं तुझसे राजी, अल्लाह मैं तुझसे खुश हूं, अल्लाह कि हालांकि अल्लाह ताला ने ये मुसीबत मेरे ऊपर डाली है, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मैं खुश हूं। और ना सिर्फ ये कि गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तुझसे राजी हूं, तूने मेरे पर ये मुसीबत भेजी है, तूने मुझे किसी काबिल समझा ही होगा, अल्लाह मुझे मेरे पर ये मुश्किल आई, मैं तुझसे राजी, ये बड़ा दर्जा है। और इससे भी ऊपर एक दर्जा है,
और वो क्या है, मुसीबत आने पे भी इंसान शुक्र अदा करता है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, किस बात पे शुक्र? जैसे कहते हैं कि एक शख्स ने शुक्र अदा किया मुसीबत आने पे, तो जब पूछा गया किस बात पे शुक्र, तो उसने कहा इस बात पे शुक्र है कि शुक्र है ये मुसीबत मेरे दीन में नहीं आई, मेरे ईमान में नहीं आई। वला तजाल मुसीबत ना फी दीन ही ना, ये तो दुआ है मसनून है, अल्लाह हमारे दीन में हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना डालना। अगर दीन में आ जाए ना तो इंसान का ईमान गया तो बस खत्म। तो एक सबसे पहली बात कि मेरे दीन में मुसीबत नहीं आई, दूसरी बात क्या कि या अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं भेज दी, इससे भी बड़ी हो सकती थी। किसी का एक बच्चा दुनिया से चला गया, बाकी बच्चे हैं, किसी को एक बीमारी आई है, बाकी जिस्म तो तंदुरुस्त है, किसी कोई एक मसले में पड़ा है, बाकी तो उसकी मसले सुलझे हुए हैं। और फिर ये कि ये दुनिया की मुसीबत है, तीसरी बात ये कि दुनिया में मुसीबत आई है आखिरत में मुसीबत तो बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया में आ गई है ना, दुनिया में मुसीबत आ जाए तो इंसान के गुनाह झड़ते ही हैं, उसके दर्जे बुलंदी होती। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का सबर है। हम किस दर्जे का सबर करते हैं, इनमें से करते भी हैं कि नहीं करते, पहली तो बात ये है, और अगर करते हैं तो किस लेवल का है सबर हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का हर मामला खैर है, हर मामला। कैसे? और ये सिर्फ मोमिन को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। कैसे? जब उसको कोई नेमत मिलती है ना तो शुक्र अदा कर देता, उसका भी उसको भलाई मिल रही। जब कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता, उसके ऊपर भी उसको भलाई मिलती। यानी या तो कोई मुश्किल होगी या फिर कोई अच्छी चीज हो रही होगी, आफियत होगी, आफियत मिले शुक्र करता है, मुश्किल आए सब्र करता। उस दोनों मामलों में ही वो विनर है, वो लूजर है ही नहीं। तो हम किस लेवल का सब्र करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बशीर साबिरीन, बशारत तो बस सब्र करने वालों के लिए और नहीं किसी के लिए। सब्र करने वाले विनर्स हैं, जो झेल जाते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, जो फिर भी चलते रहते हैं। अल्लाह अकबर। तो थोड़ा सा खौफ आता है, या कुछ भूख आती है, या कुछ माल की कमी आती है, कुछ जान की कमी आती है, या कुछ पैदावार में नुकसान होता है, सब में नहीं होता। इस तरह अल्लाह ताला आजमाता है। तो इंसान फिर उन चीजों को देखे ना जो उसके पास हैं,